नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में सेना के तीनों अंगों का सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आज नई दिल्ली में होगा। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी, मध्य और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अगले चार दिन तक हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटन्स को 33 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी बस्तर के भानपुरी में विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के चुनाव प्रचार की शुरूआत करेंगे। पहले चरण के अंतर्गत बस्तर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री का आज शाम महाराष्ट्र में चंद्रपुर और गढ़चिरौली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार का कार्यक्रम है। मोरवा एयरपोर्ट ग्राउंड में आयोजित जनसभा में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और महायुति गठबंधन के नेता उपस्थित रहेंगे। श्री मोदी इस महीने की 10 तारीख को रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के कन्हन में महायुति उम्मीदवार के लिए भी प्रचार करेंगे। नागपुर, रामटेक, हंद्रापुर, गढ़चिरौली, चिमूर और भंडारा गोडिया सहित पूर्वी विदर्भ के 5 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के साथ ही मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जबलपुर में करीब एक घंटे के रोड शो के दौरान महाकौशल में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 अप्रैल को भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में रीवा और सतना में प्रचार करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज सिवनी और शहडोल में आम सभाओं के साथ मध्य प्रदेश में अपने प्रचार अभियान की शुरूआत कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस नेता भी जल्दी ही प्रदेश के दौरे पर आएंगे। उधर निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी में तैनात किसी भी मतदान या सुरक्षा कर्मी की मृत्यु पर 15 लाख से 30 लाख रुपए तक और घायल होने पर 7.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। यह राशि विभागीय मुआवजे से अलग होगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
केरल में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और वाम दलों के नेतृत्व में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का चुनाव प्रचार जोरों पर है। केरल में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री ने कल पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के झुमुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव देश को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए है, ताकि केंद्र में एक सशक्त और स्थिर सरकार हो। इस बीच तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरुलिया में एक रैली में कहा कि उनकी पार्टी राज्य की जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व सरमा ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल के समर्थन में कल डिब्रूगढ़ में रोड शो किया। असम की 14 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के लिए देश के प्रमुख संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में आज जानकारी उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में चुनाव की। राज्य के 83,37,914 मतदाता चुनाव में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य की गढ़वाल लोकसभा सीट के लिए 13 प्रत्याशी चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं।
उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट पर 2024 के इस चुनाव में 13 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। भाजपा के अनिल बलूनी, कांग्रेस के गणेश गोदियाल, बसपा के धीर सिंह और उत्तराखंड क्रांति दल के आशुतोष नेगी ने इस सीट के लिए अपना नामांकन किया है। साथ ही सैनिक समाज पार्टी के डॉ मुकेश चंद्र पंत, सोशलिस्ट यूनिट सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की रेशमा, उत्तराखंड सामंता पार्टी के विनोद कुमार शर्मा, बहुजन मुक्त पार्टी के श्यामलाल और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की सुरेशी देवी भी इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी इस सीट में चुनावी मैदान में है। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में कुल 14 विधानसभा क्षेत्र हैं और इस सीट पर 13,69,388 मतदाता चुनाव में उम्मीदवारों का भाग तय करेंगे। वहीं गढ़वाल सीट पर 3,03,080 मतदाता पहली बार लोकसभा चुनाव में अपना मत डालेंगे। सुगम मतदान के लिए गढ़वाल लोकसभा सीट पर 2,357 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यह सीट चमोली, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनी है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनावों में युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर कई पहलों और अभियानों की शुरूआत की है। आयोग मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए टर्निंग 18 और यू आर द वन अभियानों के माध्यम से आकर्षक विषयों, लोकप्रिय आइकन और जेंजी के से जुड़ी सामग्री का उपयोग कर रहा है। महाराष्ट्र में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कई संगठन मतदाताओं को शिक्षित करने का कार्यक्रम स्वीप राज्यभर में आयोजित कर रहे हैं और मतदाताओं को जागरूक बना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
मुंबई में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं का सहभाग बढ़ाने के प्रयास में कलेक्टर और जिला चुनाव अधिकारी संजय यादव की अध्यक्षता में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। मुंबई की स्वीप समिति द्वारा विभिन्न गतिविधियां भी चलाई जा रही है। इसके अलावा बृहन मुंबई नगर निगम ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए शहर के नागरिक संगठनों के साथ मिलकर शहर के सभी मॉल, अपार्टमेंट्स और विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान की योजना बनाई है। विश्व स्वास्थ्य दिन के अवसर पर आज कोल्हापुर कलेक्टर और जिला चुनाव अधिकारी कार्यालय ने रन फॉर वोट कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस बीच महाराष्ट्र राज्य बैंक कर्मचारी महासंघ जनता को शिक्षित करने और बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों से सवाल पूछने के लिए कल से अपना राज्यव्यापी मतदाता जागरूकता अभियान शुरू करेगा। सरस्वती कुवलेकर के साथ निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल बढ़ाने और एकीकरण से संबंधित सुधार पहल और नए विचारों पर चर्चा के लिए तीनों सेनाओं का सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आज नई दिल्ली में होगा। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान करेंगे। तीनों सेनाओं के संस्थान प्रमुखों, सैन्य विभाग, एकीकृत रक्षा स्टाफ और सेना मुख्यालयों का यह पहला सम्मेलन होगा। विचार विमर्श के दौरान विभिन्न रक्षा सेवाओं से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ एकीकरण के संबंध में अपने सुझाव देंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने अपनी शैक्षणिक सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था कॉपीराइट अनुमति के बिना एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की सामग्री का व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रकाशन करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। एनसीईआरटी ने लोगों से ऐसी पाठ्यपुस्तकों या कार्यपुस्तिकाओं का उपयोग न करने का आग्रह किया है और कहा है कि उनमें दी गई सामग्री तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकती है। ये भी सलाह दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसी पायरेटेड पाठ्यपुस्तकें या कार्यपुस्तिकाएं मिलती हैं तो एनसीईआरटी को ईमेल pd.ncert@nic.in के माध्यम से तुरंत सूचित किया जाए। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी, मध्य और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अगले 4 दिन तक तेज हवाएं और ओलावृष्टि के साथ हल्के से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, विदर्भ, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा और महाराष्ट्र में इस महीने की 11 तारीख तक गरज के साथ वर्षा होगी। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा के कुछ स्थानों में आज और कल ओले पड़ सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा और तेज हवाएं चलेंगी। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 33 रन से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के 164 रन के जवाब में गुजरात टाइटंस 18.5 ओवर में 103 रन ही बना सके। यश ठाकुर को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शुरू होगा। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल मोंटे कार्लो में अंतिम क्वालिफाइंग दौर में अर्जेंटीना के फेसिंडो डियाज अकोस्टा को 3 सेट में हराकर 42 साल में मोंटे कार्लो मास्टर्स एकल मुख्य ड्रॉ में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बन गए। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग से आज रात साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है आम जनता के लिए उपलब्ध पेंशन विकल्प। वित्त और आर्थिक विशेषज्ञ बलवंत जैन और शरद कोहली श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न पेंशन विकल्पों और उन्हें चुनने के बारे में प्रश्न पूछे जा सकेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। श्रोता टेलीफोन नम्बर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल newsoneir ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
धन्यवाद कनक। चुनावी रैली में भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है नवादा की चुनावी सभा में विरोधियों पर प्रधानमंत्री ने किया तीखा हमला, बोले मोदी की गारंटी से डरा विपक्ष। वीर अर्जुन लिखता है पीएम ने लिया कांग्रेस को आड़े हाथ, कहा घोषणा पत्र देखकर ऐसा लगता है मानो इसे मुस्लिम लीग लेकर आई है। जनसत्ता की हेडलाइन है प्रधानमंत्री ने कहा जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की टिप्पणी टुकड़े टुकड़े गिरोह की मानसिकता को दर्शाती है। राजस्थान पत्रिका ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान दिया है 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी बुरे सपने की तरह। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है पारा चढ़ा तो होगा मतदान पर असर, ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने कहा ज्यादा गर्मी बढ़ाएगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट से गुलाम नबी को चुनौती देंगी महबूबा जनसत्ता में है, दैनिक ट्रिब्यून ने इसे रोचक मुकाबला बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनआईए की टीम पर हमले के पलटवार पर शीर्षक से ममता बनर्जी का बयान दिया है एजेंसियों को धमका रही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है टीएमसी करा रही है हमले, हिंदुस्तान की हेडलाइन है प्रधानमंत्री बोले पश्चिम बंगाल में हिंसा का खुला लाइसेंस चाहती है तृणमूल कांग्रेस। दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर सेना के तीनों अंगों के एकीकरण की कोशिश, पहला सम्मेलन आज, साल का पहला सूर्य ग्रहण आज होने की खबर हरिभूमि ने अपने पहले पन्ने पर देते हुए लिखा है सूर्य ग्रहण से पहले सूरज में हुए अचानक बदलाव से पूरी दुनिया के लोग हैरान। अमर उजाला लिखता है 54 वर्ष बाद होगा सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण। हरिभूमि ने मौसम विभाग के महानिदेशक के हवाले से बताया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल शुरू, अब एआई के जरिए रखी जाएगी मौसम के हालात पर नजर, ग्लेशियर के टूटने जैसी स्थितियों का लग सकेगा पूर्वानुमान। चारधाम यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने का समाचार भी अखबारों में है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में सेना के तीनों अंगों का सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आज नई दिल्ली में होगा। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी, मध्य और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अगले 4 दिन तक हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।